हमारा कैसे कल्याण होगा, इसमें तो सुख नहीं है गुरु जी। तब गुरु गुरु के पास में जाए, इसलिए अपना अंतिम कल्याण के लिए, ऐसा कल्याण कि फिर जगत में नहीं आना पड़े, फिर दुखना भोगना पड़े, इसलिए गुरु के पास में जाए। और उसका लक्षण हमारे माधव महाराज जी ने बताया, गुरु कैसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के उपाख्यान में प्रहलाद जी ने कहा, लड़कों से हरि कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बचपन से ही भगवान का भजन करो, चाहे स्त्री हो, जब इसे ज्ञान हो जाए 5 वर्ष की उम्र से या 50 वर्ष की उम्र में, जब ही ज्ञान हो जाए कि बचपन से ही भगवान का भजन, बुद्धि उम्र होती है उस समय में वो बुद्धि ग्रहण कर लेती है, और 60 हो जाने पर सठी आ जाती है, वो बुद्धि नहीं आती, जिस मरम जाते हैं उस मरम से बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और इसके बाद में मृत्यु का समय का 100 वर्ष आयु और इसका सब बतलाया, और अंत में बतलाया क्या, गुरु शुश्रूषा,
गुरु शुश्रूषया भक्ता सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधुभक्तानां निसरारधनेन च,
गुरु भक्त्या, गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधुभक्तानां ईश्वरा आराधनेन, गुरु की पद्मुआ सेवा, हमारा यही कल्याण करने वाले माता पिता भाई बंधु से भी हमारे ये प्राण, गुरु जो हमारा कल्याण करेंगे, माता पिता को भी जन्मों में नहीं कर सकते ये कल्याण करते, भगवान से हमें संबंध दे देते, तो उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करें, और जो कुछ हमारा है प्राप्त करते हैं इस जगत में सबको गुरु को अर्पण, सब लाभा अर्पण ही न चल, सब जो कुछ है उनको अर्पण कर दो। जैसे दशरथ महाराज जी ने राम के जन्म में अपना सब कुछ दान कर दिया वशिष्ठ को, वशिष्ठ जी ने ले लिया राज्यपाल, पहले हमारा हो गया किंतु हमारा प्रतिनिधि हो करके रहा,
तुम मेरा मैनेजर हो,
मैंने कभी मत समझना जो मैं इसका मालिक, ऐसे ही सब जो ये सब का मालिक कौन है, गुरु है, क्यों उसके ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते, इसलिए संगीन साधु साधुओं के शब्द गुरु की शुश्रूषा करो, सब दे दो, और जो साधु जो भगवान कृष्ण के पूर्ण आराधक है, शुद्ध प्रेमी भक्त भक्त, उनके उनके आश्रय में रह करके श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन ये सब उनकी कथा में श्रद्धा रखो, जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होती है, और यदि निष्कपट शुद्ध भक्त हो और के लालसा वाले न हो तो उनकी कथा सुनना चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी से परिचित हुआ है, ऐसे उनकी श्रृंखला में जो सदगुरु वैष्णव है उनसे हरि कथा सुनो, उनके गुण कर्म इत्यादि का कीर्तन तुम भी को सुनो और दूसरों से बतलाओ, इस प्रकार से उनका ध्यान करो, हरि सर्वत्र है, हरि सर्वत्र है। कोई पूछे प्रहलाद से तुमने कहां से जाना अपने गुरु जी से, नारद जी से, संसार बिना ये गुरु के नहीं होगा। इसी प्रकार से एकादश स्कंद में भी कहा गया है, बतलाया कर्मणि आरोह माना, सब लोग मिल करके सुख के लिए काम करते हैं, सुख नहीं मिलता दुखी मिलता, ऐसा कोई है अभी तो खूब सुखी है बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, आंख की रोशनी कम हो जाएगी, उस समय क्या होगा? और मरने के समय क्या कष्ट क्या होगा? ये कोई भी नहीं हटा सकता, केवल हटा सकता है गुरु, उसके उपदेशों से पालन करने से हो सकता है। इस तरह से तस्मात गुरु प्रपत्ते जिज्ञास, वही कथा है। बिना गुरु के कृष्ण से हमारा संबंध नहीं होगा और हमारा यह दुखमय संसार से हमारी मुक्ति नहीं होगी और कृष्ण की प्रेम। असल में हम बतलाया कि हम भगवान के नित्य दास दासी, जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे, उनकी ब्रज में सेवा नहीं मिलेगी, तब तक हम सुखी और शांत नहीं जा सकते। ये गुरु का तात्पर्य है। इस प्रकार से गुरु के संबंध में आप लोगों ने सुना, सत्ययुग में भी हम देखते हैं अरुणी उद्धार, अरुणी गया गुरु के पास में, गुरु जी हमको उपदेश दी जिससे संसार से हम तर गए। गुरु जी ने कहा 25 वर्ष हमारे आश्रम में रहो और गैया चराओ और गुरु की जो सेवा होती है घर की सब सेवा करो। 25 वर्ष तक सेवा किया। एक दिन शाम को हठात बादल उमड़ आए और मूसलाधार बरसने लगी। उसके पहले जबकि आकाश में मेघ छा गए तो गुरुवाणी ने कहा कि सूखी लकड़ी तो है नहीं, रसोई कैसे बनेगी और यज्ञ कैसे होगा? बेटा जाओ और लकड़ी सूखी ये सब दे करके खेत में मेड़ बांधा, मेड़ बांधा और उसमें पानी रुक जाएगा तो उसमें हम फसल उगाए। घोर वर्षा होने लगी और उसका बांध मेड़ का टूट गया और किसी प्रकार से रोक नहीं पाता। अंत में उस ठिठू ठंड में स्वयं लेट गया, पानी रोक लेते। सवेरा हुआ, ठिठुरता हुआ वो, उसका हृदय जम, शरीर जम गया और गुरु जी इसको खोलते हैं, अरुणी तुम कहाँ है, कहाँ है? क्षीण शब्द से बोले, गुरु जी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? तो मैं यहाँ मेल बंद करके खुद ही और पानी रोक रखा हूँ, ठन में हमारी आज्ञा पालन करने के लिए खुद ही ले लिया, उठ करके आओ। तब क्या है, उसी पर हाथ रख दिया, सब वेद शास्त्रों का जितना तात्पर्य है सब उनको आ जाए। और एक क्षण में ऐसे उस दालक नाम का एक लड़का था, गुरु के पास में गया। गुरु कहा, जी ने कहा 25 वर्ष रहो, पहले ऐसा ही नियम होता था, छठ मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, हमारी गायों को चराना और 25 वर्ष के बाद में तब फिर तुमको हम बताएं। तो गायों को लेकर के चराने के लिए जाने लगा। कुछ दिनों के बाद में देखा कि वो मोटा ताजा हो रहा है। पूछा, जी अरे तुम बड़े तगड़े हो रहे हो, तुम क्या खाते हो? और गुरु जी, जबकि बछड़े दूध पी लेते हैं गायों का, जो बच रहता है उसी को मैं पी लेता हूँ। ओ ऐसा मत करना, क्यों खबरदार ऐसा नहीं करना, बछड़े मर जाएंगे। चला गया। दूसरे दिन तो गुरु जी ने मना कर दिया, फिर भी देखा जी मोटा ताजा है। कुछ दिनों के बाद में पूछा, अरे तू कैसे क्या खाते हो, मोटे तगड़े हो? उन्होंने कहा, गैया जबकि बैठ करके पागुर करती है तो यहाँ उनका फेन हो जाता है, मैं उसी फेन को चाट लेता हूँ। अच्छा, खबरदार ऐसा मत करना कि तू क्या करना ये नहीं बता। फिर चलेगा
अभी तो नहीं,
तो अभी इस बार गुरु जी ने तो भी मना कर दिया, भूख लगी है क्या करें। तो एक वन एक पत्ता होता है, और बड़ा विषाक्त होता है, उसके पत्तों में दूध निकलता है। आपका पत्ता का बस उसी को लेकर के पिया तो अंधे बन गए और गाय को चली आई कि तू वो गया नहीं, तू में गिर गया। गुरुजी खोलते हुए आ रही, तू कहाँ है कहाँ है? मैं कुएं में गिर गया। कैसे गिर गया? आपने मना किया कि गायों का युद्ध मतलब, तो मैं मुझे बड़ी भूख लगी तो इसी का हमने पी लिया, ले लिया रस, तो उससे मैं अंधा हो गया, इसलिए कुएं में गिर गया। फिर गुरु जी ने उसको निकाला और हाथ रख कर कहे, हमारा आदेश तुमने पालन किया, इसलिए सारा वेद शास्त्र परिषद सभी ये गुरु की कृपा है। हमारे ऐसे ही त्रेता युग में देखा, भुआ जी भगवान को पाने के लिए जा रहे थे, किंतु नारद जी आए तब उनकी कृपा से हुआ। वाल्मीकि जी भी ऐसे भटक रहे थे, नारद जी मिले। व्यास जी भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे, नारद जी आए और उनको दिशा निर्देश। इस तरह से हम देखते हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गुरु का ज्ञान, भगवान होते हुए कृष्ण भी भगवान होते हुए राम भी भगवान होते हुए, इसलिए जब तक गुरु नहीं करेंगे और गुरु के अधीन हम उनके उपदेशों को पालन करके भजन नहीं करेंगे, तब तक संसार का दुख नहीं जाएगा। हम लोग समझते हैं कि ब्राह्मण कुल में आए हैं, धनी है, पानी है, सभी लोग हमको पुरोहित मानता है, गुरु करने की जरूरत क्या? और उधर देहात देह में अभिमान है, जमैन, यही तो सब अनर्थों की जड़ है। जिसका जिसका इस शरीर में ये भाव है कि मैं हूं, देहाभिमान है, ये सबसे बड़ा अनर्थ, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। केवल गुरु ही छोड़ा सकता है, दूसरा नहीं छोड़ा सकता। एक कथा है, लौकिक कथा, इतिहास। कोई एक साधु संत थे, पहुंचे हुए थे, एक शिष्य गया, गुरु जी हम तो दीक्षा मांगते थे, ठीक है कल स्नान करके आए। तो उन्होंने गुरु जी ने कह दिया, कल हमारा एक कोई आएगा शिष्य बनने के लिए, झाड़ूदारनी को कह दिया और सूखे पत्ते ले लेना, कोई गंदी चीज ना हो, उसमें थोड़ी धूल मिला ले और जब आएगा तो धूल से फेंक दे और भाग जाना, नहीं तो मारेगा। उसके अनुसार में वो जब वो स्नान करके दीक्षा के लिए आया तो वो झाड़ूदारनी ने टोकरी लेकर के उसके सामने ही फेंक दी और फूल लगी। अब तो वो थोड़ा क्रोधित हुआ, स्नान करके मैं आया ऐसा हो गया। फिर स्नान किया, गुरु जी के पास आया, गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी तुम्हारा क्रोध पूरा मात्रा में है, देह में अभिमान है, इसलिए क्रोध है, मैं पवित्र हो गया, अपवित्र हूँ, कुछ दिन के बाद में आना। बहुत दिन हो गए, फिर इसके बाद में स्नान करके आया। उसने कहा जी देखो झाड़ूदारनी वो कल स्नान करने आएगा और तुम उहार करके और थोड़ी तक तो में रखना, जब वो आए तो इस बार मारेगा नहीं, किंतु जरा सावधान रहना, फेंक करके जिससे कि धूल उछल लग जाए। तो उसने ऐसा ही किया तो देख करके बड़ा बिगड़ा, आंख रोग से लाल हो गई और मारने के लिए दौड़ा नहीं, किंतु उसके तरफ में मोहित होकर के इस प्रकार देख, वो तो भाग गए। तीसरे दिन गुरु जी के पास में गया, उन समझे हैं कुछ देर के बाद में आ रहे, अभी नहीं, अभी तुम्हारी क्रोध को जीत नहीं सके। तीसरी बात थी कुछ दिनों के बाद में आया, उन्होंने धार्मिक कहा जैसे टोकरी में वही फूल और पत्ते लेकर के और उसके सिर के ऊपर बैठा। जब वो आया दीक्षा लेने के लिए स्नान करके, तो उसके ऊपर में वो टोकरी पूरी के पूरी धूल धूल समेत उसके ऊपर में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वो दुख करके उसको प्रणाम किया, कहा जे तुम हमारी गुरु तुम ही हो, तुमने हमको क्रोध दमन करना सिखलाया, अब ठीक है। तो गुरु जी ने कहा अब स्नान करने की जरूरत नहीं है, तुम उसी तरह से आ सकते। ऐसे गुरु होते हमारे काम को क्रोध को सबको दमन करना सिखलाते हैं, कृष्ण से संबंध बतला देते हैं। यदि कोई अपनी मैं बहुत ऊंचा हूँ, आजकल देखेंगे जितने बड़े बड़े धनी लोग हैं माली लोग हैं वो गुरु नहीं करते, किस लिए करें? इतने बड़े तुम भागा, इसलिए हम उन समय में देखते हैं प्राचीन समय बड़े बड़े राजा लोग महाराज जनक तक गुरु किया, और अब सब ऋषि महर्षि सब लोग गुरु, इसलिए हम लोग भी गुरु करके भगवान का भजन करके एक दुखों से। कोई हम जानते हैं कि संसार में बहुत समस्याएं हैं, लड़कियों को विवाहित लड़कियों को भी है, लड़कों को भी है, आजकल दुनिया ही ऐसी बदल गई है, हम उस दुख में क्या कर सकते हैं? सांत्वना तो दे सकते हैं, किंतु जब तक कि भगवान का भजन नहीं करेगा कोई, तब तक इस दुख में भी कोई प्रतिकार न करके भगवान की कृपा मान करके और भगवान का भजन करना चाहिए, उसको भक्ति मिल जाएगी और उसके सारे दुख सदा के लिए।
अभी गया
झूलन पधारे
झूलन पधारे तक कान करती है,
मल्ला रख में बारिश होती है
और अभी भी खुले में सुनती है किधर से आकर, और वही कृष्ण की लीलाओं का जैसे राधा कृष्ण भूल रहे हैं उनका कान पर स्वरूप रूप के कान पर और बजाए उस पर पूरा सुनती आम की डार हो चाहे सदस्य की डार हो नहीं है तो घर में ऊपर से किसी प्रकार से झूला बना करके झूला भी लड़कियां अपने ससुराल से घर में आ राधा जी एक समय सुनन का आरंभ हुआ और श्रावण महीना आ गया कर रहे हैं जबकि बत्तर होती है और कोयल रूप होती है और उसमें राधा की चिंता कर रही है अहो मेरे किन्नत से अभी कृष्णा नहीं आया क्या उसको भूल गए पिताजी भूल गए हमको बुलाने के लिए कोई नहीं है चिंता कर रही थी और वहां से खड़ा होता है बहुत सुंदर सुंदर शहर करते हैं और लेकर के आए वो देखते ही भाव से गोल हो करके होने में तुम लोग अभी काम पर लिया हो गया तुम लोग कभी कोई नहीं आया हमने बुलाने के लिए सभी लड़कियां अपने अपने शहर में चली गई इसलिए तो आया पिताजी ने भेजा तब उन्होंने उसके साथ जनता जी से आदेश दिया और आदेश लेकर के वो चढ़ा करके और ले आए पर आना और बिना भैया मिली शास्त्री और छोटी बहन अनंत मंजरी और सब सहेलियां मिलकर बड़ी प्रचंड हो गई और दूसरे दिन से यहाँ पर अभी राधा जी का मंदिर है श्री जी का बताने में वहाँ पर मंदिर पंडित कुछ नहीं था वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे प्रदम्ब के वृक्ष थे उसी पर चूना लगाया और चूल्हे पर सूझ गई उसी समय में किसी दिन भूल गए राधा जी ने मान किया और कृष्ण से पहुंचे और बुले के पास में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं और राधिका जी ने मान किया हम नहीं आएंगे उनके साथ में सो रहे थे ललिता जी कह रहे हैं राधे तुरंत पधारो तुम आई बादल नीचे वर्षा हो रही है और तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे लिए खड़े हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं आप तो मान करके बैठी हुई क्या
मान नहीं करो हट छोड़ दिया
इसलिए मान ना करो हट छोड़ो रे
जल्दी
जल्दी से मान छोड़ करके चलो बना और यदि कहीं तो समझ लो क्या होगा कृष्ण चंद्रावती को बुला करके बैठ करके पूजा सुनेंगे और तुम ऐसे लागते रहते डर भय दिख रहा है तब राधा जी आई और सखियां लगे और विशाखा जी मलवार भार जाने लगे और सब सखियां उसमें जुड़ना उस समय में चूल्हे दो प्रकार के होते हैं एक तो एक पट्टा उस पर एक या दो आदमी बैठ करके और एक होता है खेती में जुड़ा हुआ एक इधर पटका है एक उधर पटका एक उधर से बैठता है एक उधर से बैठता है यह दूसरा पटका में पहले में कृष्ण बैठे हैं और दूसरे में कृष्ण चुला रहे हैं और इतने जोर से गया, मनो आकाश में चला जा रहा है और इधर से जब इधर में आता है तो कृष्ण ऊपर हो जाते हैं, उधर से आता है राधा जी, और राधा जी एकदम घर के मारे कृष्ण को पकड़ लिया। बस यही कृष्ण चाहते थे, राधा जी मान करके कृष्ण को आलिंगन नहीं कर रहे। होता है कि कृष्ण की लवता जी की हमारे तो स्वामी ने विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया। हमने संक्षेप एक समय की बात है, सनातन गोस्वामी गए थे राधा कुंड में और उस गोस्वामी वहीं पर थे, वे थे जहाँ पर की रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन सूची है, वहीं पर रघुनाथ जी के आश्रम पर जुटे। सनातन गोस्वामी आए और पूछा, तुमने कुछ लिखा है? कहाँ लिखा, क्या लिखा? क्या कुछ कुछ पांडवी नामक राजा जी देखे तो देख करके पटनी बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए पटनी बिस्तनी और नामचनी है। अतिगुरु ठाकुर ने शादी का अनुवाद उपाध्याय दी है तो वो सनातन गोस्वामी जी देखते हैं प्रसन्नता तो हुए, बोले कि तुमने एक बात गड़बड़ी,
रूप
का वर्णन कर रहे हैं और उसमें लिखा राधा जी की देवी मानो नागिन की पना लहरा रहे। राधा जी तो बड़ी मधुर है, उनके गुण मधुर है, रूप मधुर है, सब कुछ उनका मधुर है। उन्होंने कहा तो आप इसका संशोधन कर दीजिए, अच्छा चिंता कर लेना कुछ उपमा नहीं मिली। तो चिंतन करते करते सनातन गोस्वामी वहां से आते आ करके परिक्रमा मार्ग से जब कोने में पहुंचे यहाँ से हम मधुर के लिए गोवर्धन के लिए जब पूछे उसे ज्यादा नहीं दक्षिण और पीर का कोना है वहीं से अंदर चलते देखा जी कदमों का पेड़ है उस पर झूला लगा हुआ और उस पर एक किशोरी लड़की घूम रही और उसकी 8-10 सखियां उसको झुला रहे हैं। जो बैठी घूम रही है बड़ी सुंदर है, उन्होंने वही से घट देखा क्या उसके इसके नीचे घुस कर उतर कर उतर रहे हैं कोई नागिन और उसका फण जैसा ऐसा होता है ऐसे वो लहरा रहा है। अरे दादी 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 जब वो सांप तुम्हारे ऊपर में चढ़ा हुआ है कहीं काट न दे दौड़े वहीं से लाद दादी पर उसे भूल रहे थे। उन्होंने इसके साथ देख करके कुछ कुछ उड़ा दी और इसके बाद में देखा कदम का पेड़ है झूला नहीं है झूल नहीं गई सखियां भी नहीं ये क्या हुआ क्यों है संपर्क ओ चिंता कर गोस्वामी ने जो लिखा है उसको सप्तिक लाने के लिए ऐसी लौट करके आए उसको शांति से तुम्हारी बात लिखी हुई कोई भी झूठ नहीं जिसको सत्य प्रमाणित करने के लिए राधिका जी स्वयं अपनी सुदर्शता दिशा कर मैंने देखा और वही नागरी ऐसे खड़ा से स्नान कर रही है मैं तुम्हारे पास में आया हूँ कि तुम्हारी कोई भी बात जो लिखते हो वो गलत नहीं होती है। ये बात सबसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भी ये झूला देखा। ऐसे ब्रज में गर्मियाँ सब आती हैं, बड़ी गाँव का महीना है, एक महीना तक होता है, जिनको हमारे यहाँ संस्कृत में एकादशी से पूर्णिमा में रक्षा बंधन है, बलदेव जी का आविर्भाव करती है, हम लोग यहाँ पर भारत पर्व के वृंदावन कहेंगे, वहाँ पर पहले आनंद
आनंद धाम
में पहले झूला झुलाएंगे और फिर अपने गुरु सनातन में जाकर के झुलाएंगे और दूसरे दिन द्वादश को स्वामी का महोत्सव होगा, वहाँ से सारे वैष्णव लोग आएंगे, बड़े बड़े भक्ता लोग आएंगे, आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, सभी लोग उस दिन आइए।